विश्व दर्पण। श्रोताओं, विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे यमन में सऊदी अरब के अमानवीय अपराधों की। सऊदी अरब की युद्धक विमानों ने यमन के सादा प्रांत के शहर ज़हयान में यमनी बच्चों को ले जाने वाली बस को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों कमसिन बच्चे हताहत और घायल हो गए। मरने वाले बच्चों की संख्या 43 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 50 से अधिक बताई जाती है। घायलों की संख्या 60 से ज़्यादा है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी ने भी अपने एक ट्वीट में इस बात की पुष्टि की कि शहीद और घायल होने वालों में अधिकतर संख्या बच्चों की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार मामलों की प्रवक्ता एलिजाबेथ थ्रोसेल ने भी इस घटना पर बयान दिया।
We deplore Thursday's attack in Yemen, where a coalition airstrike hit a bus carrying children in Dayan Market in Sada, reportedly killing 40 people and injuring another 60.
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता मिशेल जाकियो का कहना था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस घटना की तत्काल जांच की मांग करते हैं।
The Secretary General emphasizes that all parties must take constant care to spare civilians and civilian objects in the conduct of military operations, and he calls for an independent and prompt investigation into this incident.
बाद में सुरक्षा परिषद की एक बैठक भी हुई और इस बैठक में भी ये मांग की गई कि इस घटना की जांच की जानी चाहिए, मगर यमन में संयुक्त राष्ट्र संघ के रवैये पर निराशा है। यमन के लोगों की इच्छा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस अमानवीय अपराध की खुलकर निंदा करे। यमन के वरिष्ठ पत्रकार हकीम अल मसमरी,
behind this attack, I'm surprised why the UN is calling for investigation rather than calling for those who are responsible for this attack to be held accountable for it. So this is one of the reasons why Yemenis have lost hope on the international community, on the UN, over 2 years ago because of this war that has not been for any other reason, only for a proxy war between two neighboring countries, between Saudi and Iran, where Yemen is paying the price. While, and in yesterday's attack, you have 51 civilians who were killed and 40 of them who were children who were just going to school, summer school, and were stopping by in a local market when that's where their death came to them. And the body parts, the corpse of all the children, those who were killed and those who were being treated, the parents right now, the entire country is mourning these innocent children who were killed just for the reason of going to school or on their way to school.
सऊदी अरब के सैनिक गठबंधन के प्रवक्ता जनरल तुर्की अल मालिकी ने एक बयान दाग दिया कि गठबंधन के युद्धक विमानों ने जो हमला किया और जिसमें सादा में बच्चों को ले जाने वाली बस निशाना बनी और नतीजे में 43 मासूम बच्चे मौत की नींद सो गए तथा दर्जनों लोग घायल हुए, वो कानूनी सैनिक कार्यवाही थी। प्रवक्ता ने दावा किया कि यह हमला उन लोगों को निशाना बनाकर किया गया जिन्होंने जाजान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। सऊदी अरब की बमबारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में थी। तुर्की अल मालिकी के इस बयान की कड़ी निंदा की गई। एंड्रयू मिचेल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़े हैं जो यमन की कई यातनाएँ कर चुके हैं। इस विशेषज्ञ का कहना है कि सऊदी प्रवक्ता का बयान घोर रूप से निंदनीय है।
Well, they clearly weren't under, there's no international law which could conceivably justify the slaughter of so many innocent children caught on a bus on their way back from a picnic. And any suggestion that this was a military target or that it accords with international humanitarian law is clearly nonsense. Well, it's perfectly clear they've hit a bus. The commander of the aircraft that dropped the bomb on the bus must have been targeting the bus, and there is no possible excuse for that. The heartbreaking pictures of these children, the statistics are utterly credible because they come from the International Red Cross. So many children murdered in this way, and others badly injured. I think evacuated to a hospital in Sada, which I visited last year, which indeed has received British taxpayer support for treating children there in two of its wards. So the appalling nature of what is clearly a breach of international humanitarian law and may indeed be a war crime is manifest for everyone to see.
इस हमले ने सबको हिलाकर रख दिया। तस्वीरें देखकर लोग दहल गए, जबकि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की दशा तो कुछ और ही थी। जब इस घटना की चारों ओर निंदा होने लगी तो सऊदी अरब ने वही अपना घिसा पिटा बयान दिया कि इस घटना की जांच करवाई जाएगी और जांच का नतीजा तत्काल सामने आएगा। स्टॉकहोम स्थित पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े पीटर वेजवैन का मानना है, इस युद्ध में अमरीका खुलकर सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई कर रहा है।
It is very clear that the US is the key supplier of weapons to at least Saudi Arabia and also to the Emirates. It may very well be that in this particular instance, it was not US bombs or US planes which were involved. But of course, if you are the main supplier, you do know that there is a very big chance that it will be your bombs and your planes which were involved. And on top of this comes, of course, also that the US has said that by actually supplying arms to countries like Saudi Arabia, they believe they can have some sort of leverage and some sort of influence and can even give them support in actually choosing the right targets. If you then have to fight a war in Yemen, then at least choose military targets to hit. And this is where the United States and also Great Britain have said that they can be of support. In this case, it seems that they have completely failed. So the question if they have a certain responsibility here is certainly a legitimate one.
इस नरसंहार से अभी कुछ ही दिन पहले अलहुदैदा शहर पर सऊदी गठबंधन ने ज़मीनी हवाई और समुद्री हमला किया था, जिसके नतीजे में 55 आम नागरिक मारे गए थे और 170 से अधिक घायल हो गए थे। इससे भी पता चलता है कि आम नागरिकों को मारना किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का नतीजा है। टीकाकार ये सवाल करते हैं कि क्या इन बच्चों ने वो बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए थे जो जाजान शहर पर गिरे, क्या इसी बस से फायर किए गए थे जो बच्चों को गर्मी की छुट्टियां बिताने के शिविर की ओर ले जा रही थी। यदि ऐसा था तो हम चाहेंगे कि अनुभवी सैनिक अफसर हमें समझाएं कि इन बच्चों ने ये मिसाइल हमला कैसे कर दिया। हमें कोई वीडियो क्लिप दिखाएं जिसमें ये बच्चे मिसाइल फायर कर रहे हों, क्योंकि सऊदी अरब का तो दावा यह है कि सऊदी विमान यमन की ज़मीन पर चलने वाली चींटी पर भी नज़र रख सकते हैं। सऊदी गठबंधन युद्ध के लगभग 4 साल के दौरान बार बार यही कहता रहा है कि उसके विमान आम नागरिकों की रक्षा के लिए सभी नियमों और कानूनों पर अमल कर रहे हैं, मगर सादा और उससे पहले हुदैदा में गठबंधन के हमलों में आम नागरिकों के जनसंहार से ये जाहिर होता है कि उनके दावे झूठे हैं, इसलिए कि अस्पतालों, बाजारों, स्कूलों और शोक सभाओं पर गठबंधन की बमबारी की एक बहुत लंबी सूची मौजूद है। यमन की सेना और स्वयंसेवी बलों ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि उनके जवाबी हमलों में आम नागरिक हरगिज़ निशाना न बने। उन्होंने सऊदी सैनिकों तथा सऊदी अरब की घटक फोर्सेस पर अपना खौफ ज़रूर बिठा दिया है। यमन की सेना और स्वयंसेवी बलों की सैद्धांतिक लड़ाई की तारीफ सऊदी अरब के भीतर भी लोग कर रहे हैं। एक सऊदी नागरिक ने सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो अपलोड की जिसमें वो यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों का शौर्य गीत सुन रहा है। इस सऊदी नागरिक का मानना है कि यमन के लोगों पर सऊदी सरकार अत्याचार कर रही है।
माशाल्लाह शैल हमासिया فيها كلام قوه 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 يمين الله تزلزل الجبال مو تزلزل الجيوش تزلزل الجبال فيها كلام إيمان يعني لا مثيل له والإيمان بالله يصنع المعجزات الله أكبر الله أكبر من يصدق من يصدق إن 15 دولة ما هي قادرة لأن هذا الحق لأنها راية اليماني الحق وكثير من الناس جاهلين ما هم عارفين وش بيقولون.
ये नरसंहार खुले युद्ध अपराध हैं जो उन विमानों के माध्यम से अंजाम दिए जा रहे हैं जो अमेरिका ने सऊदी अरब को दिए हैं, जबकि अमेरिका हमेशा सारी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का ढिढोरा पीटता रहता है, जबकि सऊदी अरब द्वारा यमन पर थोपे गए युद्ध में अमेरिका पूरी तरह शामिल है। खेत की बात यह है कि अरबों के बीच अमेरिका को अपनी इन हरकतों पर तालियाँ बजाने वाले भी मिल जाते हैं। सऊदी अरब ने यमन में केवल यही उपलब्धि अर्जित की है कि आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर मारा है, पूरे देश के मूल ढांचे को ध्वस्त करके रख दिया। सऊदी अरब के वर्तमान अधिकारियों के फैसले और उनकी कार्यवाहियाँ किसी की भी समझ में नहीं आ रही हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं जिन्हें सऊदी अरब का करीबी घटक कहा जाता है।